नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, कॉन्वर्सेशंस विद थिंग्स, यूएक्स डिजाइन फॉर चैट एंड वॉइस। डायना डी बिल और रेबेका एवनहो की संवादात्मक इंटरफेस डिजाइन पर व्यावहारिक पुस्तक है। यह उन तकनीकों पर केंद्रित है जिनसे लोग लिखकर या बोलकर संवाद करते हैं, जैसे चैटबॉट, वॉइस असिस्टेंट और अन्य वार्तालाप आधारित डिजिटल सेवाएं। पुस्तक का मूल आग्रह यह है कि इन प्रणालियों को इंसान जैसा दिखाने के बजाय उनकी वास्तविक सीमाओं को समझते हुए उपयोगी, स्पष्ट और सम्मानजनक बातचीत रची जाए। लेखक संवाद डिजाइन को केवल अच्छे वाक्य लिखने का काम नहीं मानते, इसमें उपयोगकर्ता की मंशा समझना, सही प्रतिक्रिया और अगला कदम तय करना, त्रुटियों से संभलना, अलग क्षमताओं वाले लोगों के लिए पहुंच बनाना तथा पूर्वाग्रह और गोपनीयता जैसे नैतिक प्रश्नों पर विचार करना शामिल है। लगभग 11 अध्यायों में पुस्तक सिद्धांत, प्रक्रिया और उदाहरणों का संतुलन बनाती है। इसका उद्देश्य नए और अनुभवी दोनों प्रकार के यूएक्स पेशेवरों को चैट और वॉइस अनुभवों की जटिल, अक्सर अव्यवस्थित वास्तविकता के लिए तैयार करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, बातचीत का अनुकरण करने वाली चीजों को इंसान न मानने की डिजाइन दृष्टि। पुस्तक के शीर्षक में थिंग शब्द एक महत्वपूर्ण वैचारिक सीमा खींचता है। चैटबॉट और वॉइस असिस्टेंट मानवीय बातचीत की भाषा अपनाते हैं, लेकिन वे मनुष्य नहीं हैं। यह अंतर केवल दार्शनिक नहीं बल्कि डिजाइन निर्णयों को प्रभावित करता है। यदि कोई प्रणाली अपनी समझ, स्मृति या भावनात्मक क्षमता के बारे में जरूरत से ज्यादा मानवीय आभास दे, तो उपयोगकर्ता उससे ऐसी अपेक्षाएं कर सकता है जिन्हें वह पूरा नहीं कर सकती। परिणाम स्वरूप भ्रम, निराशा और भरोसे की हानि होती है। लेखक संवादात्मक तकनीक के साथ स्पष्टता का पक्ष लेते हैं ताकि उपयोगकर्ता को पता रहे कि वह किस प्रकार की सेवा से बात कर रहा है, वह क्या कर सकती है और उसकी सीमा कहाँ है। इस दृष्टि में व्यक्तित्व का उपयोग वर्जित नहीं है, पर उसका उद्देश्य कार्य को सहज बनाना होना चाहिए, धोखे से निकटता पैदा करना नहीं। चैट और वॉइस में मानव भाषा स्वाभाविक लगती है, इसलिए छोटी असंगतियां भी बहुत स्पष्ट हो जाती है। लोग खराब मेनू से अधिक आसानी से समझौता कर सकते हैं, लेकिन अस्वाभाविक टालने वाले या गलत संदर्भ वाले उत्तर को तुरंत बातचीत की विफलता मानते हैं। इसलिए पुस्तक का व्यावहारिक संदेश है कि पहले सेवा की क्षमता और उपयोगकर्ता की जरूरत परिभाषित की जाए, फिर उसी के अनुरूप भाषा, संकेत और अपेक्षाएं बनाई जाए। दूसरा, संवाद डिजाइन में उपयोगकर्ता की मंशा, संदर्भ और अगले कदम की संरचना। संवादात्मक अनुभव में एक स्क्रीन पर सभी विकल्प दिखाकर उपयोगकर्ता को रास्ता चुनने देने की सुविधा कम हो जाती है। खासकर वॉइस में उपयोगकर्ता बोलता है और प्रणाली को सीमित संकेतों से आशय निकालना पड़ता है। पुस्तक इसीलिए संवाद डिजाइन को क्रमबद्ध निर्णयों की रचना के रूप में रखती है। डिजाइनर को यह सोचना पड़ता है कि उपयोगकर्ता किस उद्देश्य से आया है, वह बात किस तरह कह सकता है, प्रणाली को कौन सी जानकारी चाहिए और जवाब के बाद उपयोगकर्ता के लिए सबसे स्वाभाविक अगला कदम क्या होगा। अच्छे प्रॉम्प्ट केवल विनम्र वाक्य नहीं होते, वे उपयोगकर्ता को यह भी बताते हैं कि वह क्या कह सकता है, कितनी जानकारी देनी है और सेवा किस दायरे में मदद कर सकती है। इसी तरह संवाद को हर संभावित वाक्य का विशाल संग्रह बनाने के बजाय प्रमुख मंशाओं और आवश्यक जानकारी के आधार पर व्यवस्थित करना अधिक उपयोगी है। चैट में दृश्य संकेत, बटन और लिखित इतिहास मदद कर सकते हैं, जबकि वॉइस में सुनने की स्मृति और बोलने की सहजता अधिक महत्वपूर्ण होती है। पुस्तक इन माध्यमों के अंतर को ध्यान में रखने की जरूरत बताती है। लक्ष्य मानवीय बातचीत की पूर्ण नकल नहीं, बल्कि कम से कम अनावश्यक मोड़ों में उपयोगकर्ता को उसके काम तक पहुंचाना है। इस कारण भाषा, सूचना संरचना और सेवा प्रवाह को अलग अलग नहीं, एक ही अनुभव के परस्पर जुड़े हिस्सों के रूप में देखना पड़ता है। तीसरा, अस्पष्ट इनपुट, गलतफहमी और विफलता की स्थिति को मुख्य अनुभव मानना। पुस्तक का एक व्यावहारिक बल संवाद के उन क्षणों पर है जहां प्रणाली उपयोगकर्ता को समझ नहीं पाती, गलत समझती है या अनुरोध पूरा नहीं कर सकती। संवादात्मक उत्पादों में इन्हें किनारे की स्थितियां मानना जोखिमपूर्ण है, क्योंकि वास्तविक उपयोग में यही स्थितियां बार बार आती हैं। लोग अलग उच्चारणों, अधूरे वाक्यों, बोलचाल के शब्दों और अप्रत्याशित तरीकों से अनुरोध करते हैं। वॉइस में शोर, सुनने की त्रुटि और एक जैसे सुनाई देने वाले शब्द भी चुनौती बढ़ाते हैं। चैट में वर्तनी, संक्षिप्त संदेश और संदर्भ बदलने की समस्या आती है। इसलिए डिजाइनर का काम केवल आदर्श संवाद लिखना नहीं बल्कि मरम्मत वाले संवाद बनाना भी है। उपयोगी प्रतिक्रिया यह स्पष्ट करती है कि प्रणाली ने क्या समझा, किस जानकारी की कमी है और उपयोगकर्ता किस वैकल्पिक तरीके से आगे बढ़ सकता है। सामान्य और दोषारोपण करने वाले संदेश उपयोगकर्ता पर जिम्मेदारी डालते हैं, जबकि विशिष्ट मार्गदर्शन बातचीत को बचा सकता है। हर विफलता पर बार बार वही प्रश्न दोहराना भी खराब अनुभव है। बेहतर विकल्पों में अनुरोध को सीमित करना, उदाहरण देना, किसी दूसरे माध्यम का रास्ता देना या जरूरत पड़ने पर मानव सहायता तक पहुंच बनाना शामिल हो सकता है। यह विषय बताता है कि भरोसा केवल सही उत्तरों से नहीं बनता, वह इस बात से भी बनता है कि सेवा अपनी असफलता के समय कितनी ईमानदारी, स्पष्टता और उपयोगिता से व्यवहार करती है। चौथा, समावेशिता। पहुंच और पक्षपात को संवाद के मूल गुणवत्ता मानदंड बनाना। बीबेल और एवनहो संवादात्मक डिजाइन में समावेशिता और पहुंच को अंतिम जांच सूची की वस्तु नहीं मानती। पुस्तक के अनुसार भाषा, आवाज, उदाहरण, पहचान की धारणाएं और त्रुटि संभालने का तरीका यह तय करते हैं कि किसे सेवा समझती है और किसे बाहर कर देती है। जब कोई प्रणाली केवल एक प्रकार के उच्चारण, नाम, पारिवारिक संरचना, लिंग पहचान या संवाद शैली को सामान्य मानती है, तो वह दूसरे उपयोगकर्ताओं के लिए अनावश्यक बाधा खड़ी कर सकती है। वॉइस तकनीक में यह प्रश्न विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि आवाज के चयन और सहायक के व्यवहार में लिंग, नस्ल और सत्ता से जुड़ी रूढ़ियां दोहराई जा सकती है। पहुंच का अर्थ केवल आवाज से संचालित होने की सुविधा भी नहीं है। कुछ लोग बोल नहीं सकते, कुछ सार्वजनिक स्थान में बोलना नहीं चाहते, कुछ सुनने, पढ़ने या याद रखने में भिन्न जरूरत रखते हैं। इसलिए चैट, वॉइस और अन्य माध्यमों के बीच विकल्प तथा समान कार्यक्षमता महत्वपूर्ण है। पुस्तक डिजाइनरों को वास्तविक लोगों और विविध उपयोग परिस्थितियों के साथ परीक्षण करने की दिशा देती है, ताकि अनुमान के बजाय अनुभव से बाधाएं सामने आए। यह नैतिकता को उत्पाद से अलग विषय नहीं बनाती। यदि सेवा किसी व्यक्ति को गलत पहचानती है, बार बार नहीं समझती या असम्मानजनक मान्यताओं पर चलती है, तो वह सीधे अनुभव की गुणवत्ता और उपयोगकर्ता के भरोसे को नुकसान पहुंचाती है। अंत में, भरोसेमंद चैट और वॉइस अनुभव के लिए नैतिकता। गोपनीयता और सहयोगी प्रक्रिया। पुस्तक संवादात्मक प्रणालियों को उपयोगकर्ता के विश्वास की कठिन पृष्ठभूमि में रखती है। लोगों को वॉइस असिस्टेंट के हमेशा सुनते रहने की चिंता हो सकती है, वे पहले से खराब स्वचालित फोन प्रणालियों से परेशान हो सकते हैं और वे नहीं जानते कि उनके शब्दों या आवाज का डेटा कैसे इस्तेमाल होगा। ऐसे में केवल सुविधाजनक फीचर बनाना पर्याप्त नहीं है, डिजाइन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रणाली क्या सुनती या दर्ज करती है, कब करती है, किस उद्देश्य के लिए करती है और उपयोगकर्ता के पास क्या नियंत्रण है। नैतिकता का संबंध आवाज के स्वर से लेकर डेटा, सहमति और संवेदनशील स्थितियों में जवाबदेही तक फैलता है। लेखक यह भी संकेत देते हैं कि संवाद डिजाइन अकेले लेखक या यूएक्स डिजाइनर का काम नहीं है। इसमें शोधकर्ता, कंटेंट विशेषज्ञ, उत्पाद प्रबंधक, इंजीनियर और परीक्षण में भाग लेने वाले उपयोगकर्ता सभी की भूमिका होती है। मंशाओं, प्रशिक्षण डेटा, प्रतिक्रिया नियमों और परीक्षण परिणामों के बीच तालमेल के बिना अच्छी स्क्रिप्ट भी खराब अनुभव बन सकती है। यही सहयोगी दृष्टि चैट और वॉइस को अलग अलग फीचर के बजाय व्यापक सेवा रणनीति का भाग मानती है। उपयोगकर्ता की यात्रा कई माध्यमों में चल सकती है, इसलिए भाषा और नियमों में निरंतरता आवश्यक है। पुस्तक की खास उपयोगिता यह है कि वह नैतिक प्रश्नों को अमूर्त चेतावनी के रूप में नहीं बल्कि रोजमर्रा की डिजाइन प्रक्रिया, टीम संरचना और गुणवत्ता निर्णयों से जुड़ती है। निष्कर्ष में कॉन्वर्सेशंस विद थिंग्स उन यूएक्स डिजाइनरों, शोधकर्ताओं, कंटेंट डिजाइनरों, वॉइस और चैटबॉट निर्माताओं, उत्पाद प्रबंधकों, इंजीनियरों, विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिन्हें संवादात्मक इंटरफेस की जिम्मेदारी मिली है या जो इस क्षेत्र को समझना चाहते हैं। इसका लाभ केवल बेहतर प्रॉम्प्ट लिखने तक सीमित नहीं है। पाठक यह समझ सकते हैं कि संवाद में उपयोगकर्ता की मंशा कैसे सोची जाए, सीमाओं को कैसे बताया जाए, असफलताओं से कैसे संभला जाए और पहुंच तथा समावेशिता को आरंभिक डिजाइन निर्णयों में कैसे शामिल किया जाए। पुस्तक का व्यावहारिक मूल्य इस बात में है कि यह चैट और वॉइस को जादुई मानवीय तकनीक के रूप में पेश नहीं करती। इसके बजाय यह बताती है कि लोगों की अपेक्षाएं ऊंची होती है, भाषा अनिश्चित होती है और गलतियां भरोसे को तेजी से तोड़ती है। इसी कारण स्पष्टता, परीक्षण और ईमानदार व्यवहार केंद्रीय है। समान विषय की कुछ पुस्तकों की तुलना में इसकी पहचान व्यापक लेकिन जमीन से जुड़ी दृष्टि है। यह केवल वॉइस इंटरफेस, केवल लेखन शैली या केवल तकनीकी प्रशिक्षण पर नहीं रुकती। यह संवाद के अनुभव, प्रक्रिया, नैतिकता, पक्षपात, गोपनीयता और बहुमाध्यम संदर्भ को एक साथ रखती है। हल्की और सीधे संवाद करने वाली शैली इसे शुरुआती पाठकों के लिए सुलभ बनाती है, जबकि समावेशी तथा जिम्मेदार डिजाइन पर इसका जोर अनुभवी पेशेवरों के लिए भी उपयोगी मानदंड देता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं डायना डाइबल, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।